ग्रंथा श्रीमद भागवतम स्कंद 6 अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 पढ़ने। तो ये नया अध्याय शुरू है जिसमें कि चौथे में ही प्रपट है, इसलिए हम 1, 2, 3 और श्लोक भी पढ़ेंगे और उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे। इस समय जो है जो अध्याय से पहले जो समाप्त हुआ है वो था वृतासुर का आविर्भाव, और अभी जो है इस अध्याय का नाम है देवताओं तथा वृतासुर का युद्ध। शिवाद नारायण उवाच इंद्रमेव समादृश्य भगवान विश्व भावना पश्चाता मनीषेषाणाम तत्रवादंतर्गदे हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं देवताओं के देखते देखते वहीं से अंतर्धान हो गए। तथा भियाचितो देव ऋषिराठवर्णो महान मोदमान उवाचेदम प्रहर्षनीव भारत। हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञानुसार देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीची के पास पहुंचे। वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार से हो गए, किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले। अपि वृंदारकायूयम् न जानीथ शरीरणाम संस्थायाम यता विद्रोह दुस्सहस्तेशनापहा। हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असहा वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है, क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? आज का श्लोक 4। जिजीविषुणाम जीवान आत्मनाम प्रेष्ट इहेप्सितः। ओ सॉरी, ये तो 7 पढ़ोगे आप हमारे। जिजीविषुणाम जीवनाम आत्मा प्रेष्ठ इह इप्सिता क उत्सहेता तमा गातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। जिजीविषुणाम जीवन आत्मन प्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। जिजीविषुणाम जीवानाम आत्मप्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। जिजीविषुणाम जीवानाम आत्मप्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्सहेतं दातुं वेक्षमानाय विष्णवे। जिजीविषुणां जीवित रहने के इच्छुक जीवानां समस्त जीवात्माओं का आत्मा शरीर प्रेष्ठ अत्यंत प्रिय इह यहां इप्सितः इच्छित का कौन उत्सहेता सह सकता है तम उस शरीर को दातुम देने के लिए भिक्षमाणाए मांगने के लिए विष्णवे भगवान विष्णु को भी। अनुवाद इस प्रकार है, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार से यहां तक कि अपना सर्वस्व निछावर करके रक्षा करने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा?
भले ही भगवान विष्णु क्यों ना मांगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, कहा गया है आत्मानं सर्वतो रक्षेत ततो धर्म ततो धनम। मनुष्य को सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब वह धर्म और उसके बाद अपने धन की रक्षा करे। यही समस्त जीवात्माओं की कामना होती है। कोई भी अपना शरीर तब तक त्यागना नहीं चाहता जब तक कि कोई बलपूर्वक छीन ना ले। यद्यपि देवताओं ने कहा कि वे भगवान विष्णु के आदेशानुसार अपने लाभ के लिए दगीची का शरीर मांग रहे हैं, किंतु दगीची ने अपना शरीर देने से एक तरह से इनकार कर दिया। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। इससे पहले कि यह अध्याय शुरू हुआ, थोड़ा सा इसका जो है समरी हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि इंद्र द्वारा दगीची का शरीर प्राप्त करने के पश्चात दगीची की अस्थियों का वज्र बनाया गया और फिर देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध छिड़ गया। श्री भगवान के आज्ञानुसार देवतागण दगीची मुनि के पास गए और उनसे उनका शरीर मांगा। दगीची मुनि देवताओं के मुख से धर्म के विषय में सुनना चाहते थे, अतः उन्होंने हंसी में अपना शरीर त्यागने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में सत्कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शरीर त्याग करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इस शरीर को कुत्ते तथा गीदड़ जैसे नीच पशु खा जाते हैं। दगीची ने अपने पंच तत्व निर्मित स्थूल देह को मूल पंच तत्वों में समाहित करके अपनी आत्मा को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने स्थूल शरीर को छोड़ दिया। तब विश्वकर्मा की सहायता से देवों ने दगीची की अस्थियों का वज्र तैयार करवाया। इस वज्र से संचित वे हाथियों की पीठ पर सवार होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। सतयुग के अंत तथा त्रेतायुग के प्रारंभ में देवों तथा असुरों में भीषण युद्ध हुआ। देवों का तेज ना सह सकने के कारण असुर युद्ध भूमि से भाग गए, किंतु उनका नायक वृतासुर अकेला छूट गया। उसने असुरों को भागते देखकर युद्ध भूमि में लड़ने और मरने की महत्ता पर उपदेश दिया। जो युद्ध में जीतता है उसे भौतिक संपत्ति प्राप्त होती है, किंतु युद्ध भूमि में प्राण गंवाने पर उसे स्वर्गीय लोगों का में वास मिलता है। दोनों ही प्रकार से योद्धा लाभ में रहता है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार हम लोग पिछले कुछ अध्यायों में वृतासुर के प्रसंग को पढ़ रहे हैं, ये वृतासुर हम लोग पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो असुर थे जिन्होंने पहले देवताओं की मदद के लिए कार्य किया, लेकिन बाद में अब क्योंकि उन्होंने असुरों की भी हेल्प की, इसलिए इंद्र जो हैं अब उनका वध करना चाहते थे। और भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने पिछले कुछ श्लोकों में, इसके पिछले अध्याय में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि वृतासुर का वध जो है, अगर आप लोग दगीची मुनि के पास जाएं और उनसे उनका शरीर मांगे, उनके शरीर में भी जो उनकी अस्थियां हैं उससे एक वज्र बनाएं, उससे जो है उनको मारा जा सकता है। किनको? वृतासुर को। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो हम देख सकते हैं कि हर जगह युद्ध चल रहा है। मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। कितनी तरह की मेंटालिटीज हैं, उन सारी मेंटालिटीज में चाहे कहीं पर भी हो, चाहे घर परिवार में दो लोग रहने वाले हों, तो भी संतुष्ट नहीं रह पाते। नहीं देखा आप लोगों ने? जैसे हम लोग देखते हैं कभी विवाह होता है तो तुरंत विच्छेद भी हो जाता है, दो लोग नहीं रह पाते साथ में, और जहां चार या पांच हो तो वहां और मुश्किल होता है। जहां पर और बड़ा परिवार हो लोगों को लगता है वहां और मुश्किल है। तो पूरे संसार भर में कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश के साथ, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ, एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ, यहां तक कि ऊपर के लोकों में जाएं तो वहां पर प्रॉब्लम है। आप ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्तन अर्जुन, भगवान ने कहा कि भैया ये 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है हर जगह कलेश ही कलेश। तो अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट में ट्रांसफर होने की कोशिश करो, ज्यादातर लोग करते हैं जब दुखी हो जाते हैं, मान लो दो लोग हैं, उन दो को जब पता चलता है कि हम साथ नहीं रह सकते, तो फिर वो कहते हैं कि हम लोग कहीं और जाएंगे, हम अपना एक सिस्टम चेंज करेंगे, तो चेंज करके देखते हैं लोग, तो वहां पर भी दिक्कतें आती हैं। कोई व्यक्ति एक परिवार में बैठा है, वैसे ऐसे ऐसे बैठे रहने में भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना, हम लोगों को सबको प्रॉब्लम होती है, तो हम साइड चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता या बहुत लंबे समय तक दुखी भी नहीं रह सकता। एक जाति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहती है जहां पर और कंफर्टेबल स्थान हो। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाए लेकिन जो भगवान ने स्टैंप लगाया है कि ये दुखालय है, तो हर जगह दुखी मिलेंगे, कोई व्यक्ति कहीं पर भी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो इस तरह देवता और असुरों के मध्य में भी हमेशा युद्ध होता रहता है अपने प्रभुत्व को लेकर। जब देवता लोग खूब आनंद में अपना जीवन भोगने का प्रयास करते हैं, तो कुछ उनके विघ्न डालने के लिए कुछ असुर वहां पहुंच जाते हैं और उनके अच्छे खासते जीवन में जो है कष्ट दे देते हैं या उनके उस पोस्ट को छीनना चाहते हैं। तो इंद्र इत्यादि लोग जो हैं सदैव उनसे पीछे छुड़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं या उनके साथ युद्ध करने में लगे रहते हैं, शक्तियां अर्जित करने में लगे रहते हैं और मारने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये कलेश इस तरह के ऊपर के लोकों में भी हैं, पृथ्वी में तो हर जगह भरे हुए हैं और मतलब हर जगह पर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस समय जो दधीची मुनि हैं वो एक ऐसे मुनि हैं और कृष्ण भावना भावित भी हैं, वो देवता लोग उनके पास पहुंचे, क्योंकि अकेले इंद्र के ऊपर संकट नहीं है, सारे देवता जातियों के ऊपर संकट है, क्योंकि सारे के सारे असुर बहुत बलशाली हो गए थे और अब सबको जो है अपनी पोस से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, तो इसलिए सब लोग एक हो गए। और जब भगवान ने कहा इंद्र को कि तुम जो है दधीची मुनि की अस्थियों से एक वज्र बनाओ, उससे वृत्रासुर का वध होगा, तो सब लोग एक हो गए और देवता लोग दधीची मुनि के पास गए और कहा कि हमें आपका शरीर चाहिए। कितनी अजीब बात है, ये सुनते ही दधीची मुनि ने कहा इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, सबको है, अपने शरीर को अक्षुण बनाए रखने के लिए ये संघर्ष में वह सभी प्रकार से यहां तक कि अपना सर्वस्व निरछावर करके रक्षा करने का प्रयत्न करता है। तो ये कटु सत्य है कि हर व्यक्ति अपने शरीर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कई बार जैसे एक बार देखा गया कि एक बड़े से ट्रांसपेरेंट ग्लास के बॉक्स के अंदर बड़े से उसमें पानी भरा गया और एक बंदरिया को और एक बंदर के उसके बच्चे को रखा गया। तो जैसे पानी बढ़ने लगा तो बंदरिया ने किसकी रक्षा करी, अपने बच्चे की रक्षा करके अपने बच्चे को गोदी में उठा लिया। तब धीरे धीरे पानी बढ़ा तो जब पानी बच्चे तक आने लगा तो उसने उसको कंधे पर रख लिया। अभी कंधे में रखने के बाद क्या वो पानी और बढ़ा तो उसने उसी बच्चे को कहां रख लिया, अपने सर पर रख लिया। लेकिन जब पानी का स्तर और आगे बढ़ा और बंदर के ही नाक तक पहुंच गया या नाक से ऊपर जाने लगा तो उसको अपने प्राणों का संकट दिखा, तो उसने कहा मैं इसको क्यों बचाऊं, पहले तो अपने प्राणों की रक्षा करनी है। तो उस बंदर के अपने बच्चे को लिया, अपने पैरों के नीचे रखा और अपने को बचा लिया। तो इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट को हम समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए रूपा जी ने एक श्लोक भी कोट किया, आत्मनम सर्वतो रक्षेत ततो धर्म ततो धनम। भाई पहले अपने शरीर की रक्षा कर लो, अपने प्राणों की रक्षा करो, तब तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे और फिर तब धन इत्यादि की रक्षा कर पाओगे। यहां पर दधीची मुनि क्योंकि सब कुछ जानते हैं, उन्होंने हंसी में बात उड़ाई और कहा अपने प्राणों की रक्षा तो करनी है, अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा। कोई व्यक्ति प्यार से आए, प्रभु जी आपसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, आप प्लीज आत्महत्या कर लो। वो कहा क्यों भाई आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप आत्महत्या करो, मैं क्यों करूं। तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को जो है देना नहीं चाहता, व्यक्ति मारना चाहता है, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मैं किसी कुछ भी कर सकता हूं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहां पर फिर आखिर में कह रहे हैं कि भले ही भगवान विष्णु क्यों ना मांगे, कि अगर भगवान विष्णु स्वयं आ जाएं और कहें अपना शरीर दे दो तो कौन देना चाहेगा। कई बार हम लेक्चर्स में जब बोलते हैं लोगों को कि कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो इसी तरह लोग हाथ उठाते हैं। तो हाथ उठाना अच्छी बात है, इच्छा रखना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सीरियसली इस बात पर विचार करें कि भगवान के धाम जाने का मतलब ये नहीं कि सशरीर जाओगे, इतने अच्छे पुण्य कार्य नहीं किए हमने या इतना अच्छा सिद्ध देह नहीं प्राप्त कर लिया अभी कि सर शरीर हम चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जब हम हाथ उठाते हैं कि हाँ भगवान के धाम जाना है, तो उससे पहले मृत्यु होनी चाहिए ना। और जितने भी पोजीशंस हमारे पास है, प्रॉपर्टी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अभी हाथ खड़ा करो। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा आसक्ति है व्यक्ति की, सबसे पहले अहम अर्थात मैं इस शरीर से, और फिर इस भाव से कि जब मैं का भाव आता है और मैं के भाव के बाद आता है क्या, प्रभुत्व जमाने का, कि ठीक अगर मैं हूं तो फिर ये सब कुछ मेरा है और सबको मैं एंजॉय करना चाहता हूं। तो इतनी ज्यादा डीप रूटेड जो है ये चेतना हमारी है, क्योंकि कई कई जन्मों से नाना प्रकार के शरीरों में घूमते हुए आ रहे हैं। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में तीसरे स्कंद में कहीं पर कि जब व्यक्ति हेलिश प्लैनेट्स में भी जाता है या नाना प्रकार की योनियां भी ग्रहण करता है, उसको वहां पर जाकर भी उसमें किसी प्रकार का एक सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट मिलती है। क्या कारण है? तो उसमें बोला गया है आत्मजाया सुतागार, अर्थात सबसे पहले उसको जो शरीर मिलता है किसी भी योनि में मिले तो उसको अपना शरीर बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरा शरीर है। जैसे जो लोग ज्यादातर बॉडीली कॉन्शियसनेस में हैं, वो शीशे के आगे बड़ी देर तक खड़े रहते हैं और हर एंगल से अपने को देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, पीछे से आगे से, पूरा कोशिश करते हैं कि कोई कमी तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है, और फिर बाद में अपने आप को पूरे मार्क्स भी देते हैं कि यस 100 out of 100। तो हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने देह से जो है आसक्ति रहती है। आत्मजाया, फिर क्योंकि शरीर में ऐसा नहीं है कि ये विवाह संपन्न केवल मनुष्य देह में ही होते हैं, ये हर योनि में होते हैं। संस्कार उस तरह के नहीं होते, लेकिन मैथुन जीवन हर योनि में होता है। तो हर योनि में उसको पहले अपने शरीर से आसक्ति, उसके बाद आत्मजाया, फिर धर्मपत्नी या पति उससे आसक्ति, सुतागारा तो फिर बच्चे भी चाहिए, फिर उसके बाद बच्चों में उसका प्यार बढ़ता है, फिर अपना मकान भी चाहिए उसको, इसके अलावा मनोरंजन के लिए कुछ पशु भी पालने उसको, तो उन पशुओं से भी अटैचमेंट होता है, उस घर से भी अटैचमेंट होता है। तो इतनी चीजें उसके आसपास रहती हैं कि कुछ समय के बाद वो उसमें इतना बंध जाता है कि वो उसको समझते यही जीवन का लक्ष्य है और एक सेटिस्फेक्शन फील करता है, चाहे वो किसी भी योनि में जाए ये जीवात्मा। लेकिन बताया जाता है मनुष्य देह में आने के बाद केवल यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से हम लोग इस देह और आत्मा के संबंध को जान सकते हैं। यहां दगीची मुनि ने मजाक किया है देवताओं के साथ कि भैया मैं क्यों दूं शरीर, भगवान विष्णु भी मांगे तो भी कोई नहीं दे सकता। इसलिए कई बार बोला जाता कि अगर कोई भक्त नहीं बनना चाहता तो भगवान स्वयं आ जाए और कहें कि भक्त बन जाओ तो भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान के लिए कहीं कोई जगह नहीं। उसके हृदय में क्या है? केवल काम, इच्छाएं और इस संसार को भोगने की लालुपता। इसलिए भक्ति के लिए बताया जाता है कि एक ही क्वालिफिकेशन है। क्या है? लौल्यम अपि एकलम मूल्य, केवल एक ही मूल्य है, वो क्या है? लौल्यम। लौल्यम का मतलब इंटेंस ग्रीड। किसी के भी हृदय में अगर भगवान को सच में प्राप्त करने की, भगवान के धाम जाने की इच्छा है, तो केवल मात्र यही इच्छा उसको शुद्ध भक्त बना देगी। सब व्यक्तियों को अपना हृदय देखना चाहिए, हर व्यक्ति को, खासकर जो मनुष्य देह में है और खासकर भक्ति मार्ग में है, तो अपने हृदय का जो है ओपन हार्ट सर्जरी करना चाहिए बार बार। उसमें देखना चाहिए कि मेरे हृदय में कितना प्रेम है कृष्ण के लिए। इसलिए सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भक्तों को चाहिए, जो साधक भक्त हैं, कि वो सदैव अपनी साधना को परफेक्ट रखें, लेकिन साथ ही साथ हृदय से भगवान का स्मरण करने की भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, और खासकर जिन लीलाओं के प्रति उनका आकर्षण है उनके विषय में सदैव सोचते भी रहें। इससे जो है हमारा भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, उनके रूप के प्रति आकर्षण पैदा होगा। नहीं तो हमारा आकर्षण इस संसार में पूजा लाभ प्रतिष्ठा या भौतिक इच्छाओं के प्रति हमेशा उसी में रहेगा। क्योंकि भक्तिमय जीवन और भौतिक जीवन में अंतर क्या है? खाली केवल कृष्ण का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। एक व्यक्ति जिस प्रकार मटेरियल वर्ल्ड में रहकर अच्छी डिग्रीज और प्रोफेशनल डिग्रीज के द्वारा एक्सपर्टीज के साथ काम करता है, वही व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन में आ सकता है या भक्ति में आता है तो उस तरह वह भी यहां काम करता है। लेकिन अगर चेतना में कॉन्शियसनेस में कृष्ण नहीं समाये हुए, जीवन का लक्ष्य उसने निर्धारित नहीं किया, तो वो सब काम कुछ न कुछ तो हेल्प करेंगे लेकिन उतना हेल्प नहीं करेंगे जैसे बोला गया विश्वक सेन कथा सुया, अर्थात भगवान कृष्ण की कथाओं के प्रति उसकी रुचि नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम। उसका पूरा जीवन इतने सारे प्रकार की सेवाएं या काम क्या कहलाएगी, केवल यूजलेस लेबर कहलाएगी, मिश्रित भक्ति हो जाएगी, अर्थात नाना प्रकार की इच्छाओं से की गई भक्ति जो कि उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर नीचे ही छोड़ देगी और उसको फिर से प्रयास करने पड़ेंगे। तो हर व्यक्ति अपने देह के प्रति इतना चिंतित रहता है लेकिन यह चिंता उसकी तब तक बनी रहती है जब तक कि वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार ना कर ले, अर्थात लिबरेटेड स्टेज पर ना आ जाए। इसलिए मनुष्य देह प्राप्त होने का मतलब ही है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में कम से कम प्रयास करने चाहिए कि लिबरेट हो जाए। और लिबरेशन का मतलब क्या है, मुक्ति। और मुक्ति का मतलब क्या है, थोड़ा सा और डिफाइन करें कि हर उन वस्तुओं से जो कि पांच तत्वों से निर्मित है इस संसार में, जिसका कि आध्यात्मिक कोई औचित्य नहीं है, और अपने मन बुद्धि और अहंकार से उसका जो कंटेमिनेशन, उसका जो दूषीकरण हो रखा है क्योंकि यह भी भौतिक है, उन सब से अनासक्त होना, उन सब से मुक्ति होना एक्चुअली। तो जब व्यक्ति इस धरातल पर पहुंच जाता है तो उसे लिबरेटेड स्टेज बोलते हैं, लिबरेटेड सोल कहते हैं। और लिबरेटेड सोल का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान की सेवा कर सकता है। लिबरेटेड स्टेज से ही बताते हैं कि क्या शुरू होती है, भगवान की सेवा शुरू होती है। तो जब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत में इच्छाओं की, तो ये सब इच्छाएं और पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सेकेंडरी है, सबसे पहले अहंकार है, अर्थात ये मानना कि मैं शरीर हूं। यहीं से व्यक्ति की समस्याएं शुरू होती हैं क्योंकि शरीर मानते ही फिर उससे संबंधित जो उसका जीवन यापन के लिए या दूसरी चीजों के लिए वो है, वो आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे कई बार शास्त्र में कहा गया है स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, एक विस्तार नाम दिया गया इसको। जब तक व्यक्ति अकेला है तो उसको केवल अपने मन और अपनी बुद्धि और अपने इंद्रियों से स्ट्रगल करना है और उन पर विशेष स्ट्रगल करते हुए भक्ति करते हुए व्यक्ति बचा सकता है अपने आप को। लेकिन जैसे ही वो पारिवारिक जीवन में जाता है तो विस्तार बढ़ जाता है। और श्रीमद् भागवतम इत्यादि में कई प्रकार से लिखा गया कि किस प्रकार व्यक्ति जैसे ही पारिवारिक जीवन में जाता है तो उसकी इच्छाएं, उसकी आसक्तियां बढ़ जाती हैं। पहले अपने मन और अपनी इंद्रियों से संघर्ष होता था, अब एक व्यक्ति और आ गया, अब उसके मन, उसकी इच्छा और उसकी इंद्रियों से संघर्ष, और दो चार छह और आ गए या आसपास और बढ़ गए रिलेटिव्स, तब उनके साथ ईर्षा द्वेष और नाना प्रकार के झंझट। तो इस प्रकार विस्तार बताया गया है इस चीज को। और फिर मकान भी चाहिए, फिर दुकान भी चाहिए, फिर जॉब भी चाहिए, फिर पैसा भी चाहिए, फिर बैंक बैलेंस भी चाहिए, फिर प्रॉपर्टीज भी चाहिए, फिर फ्यूचर भविष्य निधि भी चाहिए, फिर चार पैरी वाली गाड़ियां भी चाहिए, और फिर ये सब विस्तार बताया गया इस प्रकार। लेकिन यही समस्या नहीं है, श्रीमद् भागवतम में इन सब चर्चों की चर्चा हुई है कि यह सब विस्तार हो जाता व्यक्ति का इस प्रकार। लेकिन आजकल तो और भी समस्याएं बढ़ गई। क्या कि अगर अब व्यक्ति ने विवाह कर लिया तो बहुत तेजी से ये रेशियो बढ़ रहा है। ये जो संकट बताए ये तो शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन अब जो बता रहे हैं बताए लिखे भी हैं, आप सब देख सकते जानते हैं कि जैसे ही व्यक्ति विवाह करता है तो ज्यादातर क्योंकि लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है तो संकट किस रूप में आते हैं, डाइवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट केसेस, सबको घसीट लिया जाता है। ये तो लिखा ही नहीं कहीं है ना कि इस तरह व्यक्ति उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, जितने सब लोगों ले लो, और व्यक्ति पूरा चिंतित चिंता के अंदर। हम लोग गए थे तिहाड़ जेल में तो लोग मिले हमें वहां पर, अच्छे अच्छे परिवार से लोग, तो पूछा कि आपने क्या कर दिया ऐसा, कहते हमने कुछ भी नहीं किया। तो फिर यहां कैसे आप कहते जी अब क्या बताएं आपको।
तो इस प्रकार जो है, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, जब तक किसी व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य नहीं पता होगा, तो व्यक्ति एक दूसरे को घसीटता ही रहेगा। पहले पुरुष प्रधान इस देश में पुरुष लोग माताओं को, स्त्रियों को घसीटते थे बंद कमरों में, खूब पिटाई करते थे। अभी स्त्री के हाथ में लग गया क्या चाबुक, मतलब जो भी है अभी उनके हाथ में आ गया। अभी वो केवल यूं घूर के भी देखता था, कहते इसको नीचे कर लो आप, नहीं तो। तो माता पिता भी जो है बच्चों की तरह, बच्चों की भांति बन जाते हैं, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं है ना, कुछ चोट तो नहीं लगी, इनको मालूम है कि एक कंप्लेन में सारे अंदर चले जाएंगे, है ना। और यहां तक कि जो बेचारे जो रिश्तेदार शादी में आए थे उन तक को कहते हैं घसीट लिया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि भौतिक जगत में कभी किसी की विजय और कभी किसी की विजय, इस तरह चलता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो विवाद है इस प्रकार के, ये वहां चलते हैं उन लोगों के जीवन में है जिन लोगों को जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। जो लोग अपने को मानते हैं कि हम शरीरी हैं और इस जगत में भोग करना चाहते हैं, और जो भोग करना चाहता है फिर उसके लिए दुनिया का सारा सामान, पैसा और प्रॉपर्टी सब कम है। क्यों? क्योंकि भोग की कोई सीमा थोड़ी होती है। इसलिए व्यक्ति अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दूसरे लोग भी हों, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बचपन से कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहा है, आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है, उसको पता है कि इस जीवन में मैं व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है उसकी खुराक कितनी है और कितना उसको चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपने जीवन जी के अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। यहां पर उन्होंने इस प्रकार का व्यंग इसलिए किया ताकि वो देवताओं से कुछ धर्म के सिद्धांतों को सुन सके। और आगे देवताओं ने कुछ सिद्धांतों का भी बताया कि शरीर का मतलब क्या है। देखिए शरीर जो है पांच तत्वों का बना हुआ है, लेकिन पूरा जीवन व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त रहता है और दूसरों के शरीर से आसक्त रहता है। जैसे कथा आती है कि एक बार एक राजा को जंगल में विहार करते हुए, घुड़सवारी करते हुए अचानक एक बहुत सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ, और अभी वो उसकी चक्कर काटने लगा कि और कहा उतर के कि मैं, आप कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, कहते आप कौन हो? कहते मैं इस जंगल का नहीं, मतलब पूरे राज्य का राजा हूं। अच्छा काम बताइए। कहते मैं आपके सुंदर रूप से आकर्षित हूं और मैं चाहता हूं मैं आपसे विवाह करूं, आपको मैं रानी बनाना चाहता हूं। कहते तुम राजा हो, राज ऋषि हुआ करते थे लोग, ज्ञान हुआ करते था आप, ब्यूटी से? कहते नहीं मैं नहीं करता। कहते नहीं मैं आपसे करना चाहता हूं। कहते ठीक है आप अगले हफ्ते तक आइएगा, मैं यहीं मिलूंगी। ठीक है एक हफ्ता, एक हफ्ता वो राजा सो नहीं पाया, नींद गई, चैन उड़ गया, खाना करवटे बदलने लगा, हालत होती है लोगों की इस तरह। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता कटा नहीं, उसे बड़ी मुश्किल से पहुंच गया, टाइम से पहले पहुंच गया है ना जी। और जब वहां पहुंचा तो मिले नहीं उसको, वो बड़ी देर तक देखते रहे कहां है कहां है। तो एक स्त्री बैठी हुई थी कॉर्नर, कुरूप स्त्री लाइक, तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी माता जी, वो यहां पर एक कुटिया के पास एक सुंदर स्त्री रहती थी। कहते हाँ हाँ। तो कहते कहां है वो? आज का टाइम था, आज का वादा था, हमने विवाह करना था। कहते अच्छा बेटा वो मैं ही हूं। मैं हूं मतलब? कहते मजाक मत करो प्लीज मुझे चोट लगेगी मुझे। कहते नहीं मैं ही हूं वो, मुझे याद है 7 दिन पहले तुम आए थे मेरे पास, मुझसे तुमने कहा था। कहते शक्ल तो लग रहा है थोड़ी थोड़ी मिल रही है, बट आपकी बेटी थी ना वो? कहते नहीं वो मैं ही हूं। कहते ऐसा नहीं हो सकता। कहते बस मेरी सुंदरता ही तो कम हुई है, बाकी सब वही है, हाइट वही है ना, सब कुछ ठीक है। कहते मेरी सुंदरता जो है उन मर्तबानों में पड़ी जिससे तुम विवाह करना चाहते थे। कहते उन मर्तबानों? तो वहां गए, कमरा खोला, देखा कुछ मर्तबान पड़े बिंस, खोल कर देखता है तो क्या देखता है कि एक के अंदर उसने वॉमिट कर करके पूरा भर रखा था, तो दुर्गंध आई, इसको तुरंत ढक दिया उसने। कहते माय गॉड। दूसरा खोलता है तो लूज मोशंस जो हुए थे उसको उसने उसके अंदर
एक मर्तबान के अंदर रख दिया। इस प्रकार जो कफ वात पित्त निकाल निकाल के उसने सारे मर्तबान भर रखे थे और कहा ये है मेरी सुंदरता, तुम इसी से विवाह करना चाहते थे। राजा हो तुम, राज ऋषि हुआ करते थे जिन्हें ज्ञान हुआ करता था, और तुम पूरा राजपाट छोड़ के 7 दिन तुम्हें करवटें बदल ली, तुमने ये कर दिया और वो कर दिया और पूरा का पूरा मुझ में केंद्रित हो गई, ये है मेरी सुंदरता। तब उसको ज्ञान है, तब समझ आया। यहां पर इस एग्जाम्पल को बोलेंगे लिक्विड ब्यूटी के नाम से एक कथा है, लेकिन समझना चाहिए ये पूरा का पूरा संसार इसी प्रकार ताने बोने से बुना है कि पुरुष स्त्री से आकर्षित है और स्त्री पुरुष से आकर्षित है। केवल काम आगार कहा गया है, शैकल्स हथकड़ियां बांधी गई हैं उस जीवात्मा पर जिसने इस भौतिक जगत में आनंद उठाने की इच्छा जाहिर करी। ऐसी जीवात्मा को इस भौतिक संसार में भेजा गया, इस जेल में भेजा गया है, और इस जेल में सजा किस रूप में दी गई है? काम सुख काम आगार, अर्थात हथकड़ियां पहनाई गई हैं काम सुख की। कोई व्यक्ति अगर जेल के अंदर भी लड़ाइयां करता रहे, दूसरे का सर फाड़ता रहे, तो बाहर निकलने के चांसेस हैं उसके? नहीं। उसी प्रकार जो जीवात्माएं इस भौतिक जगत में आ गई हैं, तो जब तक वो यहां पर इंद्रिय भोग करते रहेंगे, यहां पर इंद्रिय सुख की कामना से यहां पर इंजॉय करने की कोशिश करते रहेंगे, क्या वो बाहर निकल सकते हैं? क्या उनके अच्छे उनके हृदय में ये इच्छा डेवलप हो सकती है कि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय? नहीं। कितनी सुंदर ढंग से भगवान की बहिरंग शक्ति माया ने इस भौतिक जगत को बुना है जिससे कि व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि जिस चीज के लिए मैं सुबह दोपहर शाम सोच रहा हूं, जिसको मैं भोगना चाहता हूं, वही मेरे बंधन का कारण बनेगी। अग्नि को देखकर परवाना है ना, परवाना ही बोलते हैं, पतंगा, शमा पतंगा, शमा परवाना बोलते हैं ना, तो पतंगा अपने आंखों से जैसे दर्शन करता अग्नि का, तो क्या होता है, उसे रहा नहीं जाता। एक मिनट, एक सॉन्ग भी था ऐसा ना, तू शमा है मैं परवाना हूं और मैं अंदर, तो बता भी रहे हैं सब कुछ कि व्यक्ति जो है स्त्री पुरुष का आकर्षण इतना खतरनाक है व्यक्ति के लिए कि वो उसमें अपने को झोंक देना चाहता है, लेकिन फिर से बाहर नहीं निकल पाता। अंधकूप कहा गया प्रहलाद महाराज का, अंधकूप ऐसा कुआं जिसका बेस नहीं है, ऊपर से गिरा तो आवाज ही नहीं आ रही नीचे ठांगी। जनरली अब कुएं में कुछ फेंको या छत से कुछ फेंको तो आवाज आती है, फिर पता चलता है इसकी इतनी गहराई है। बट ये भौतिक जगत, ये गृहस्थी का चक्कर, ये इतना खतरनाक है कि बस एक बार कुछ फेंको या ऊपर से खुद नीचे कूदो तो आवाज नहीं आती। बेसलेस कुआं, बेसलेस वेल, जा रहा है बस नीचे, निकलने का कुछ है नहीं। कहीं पर कुछ टहनी, कुछ पेड़, कुछ मिल जाए तो पकड़ ले उसको। वो किस रूप में है? कुछ शास्त्र मिल गया, कुछ वेद मिल गया, कुछ साधु मिल गया जो कह रहा चलो ऊपर, इससे बाहर निकलो। निकलना नहीं चाहता। इतना खतरनाक है ये देह का आसक्ति होना देह से। इसलिए साधु लोग क्या करते हैं ना, अब देखो कि जंगलों में रहते हैं, कपड़े भी ऐसे नहीं होते कि 3 पीस सूट सिला रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, सिंपल क्लोथिंग। साधु जन सड़कों पे पड़े हुए जो गृहस्थ लोग कपड़े फेंक देते थे, उन्हीं को झाड़ झूड़ कर धोकर पहन लेते थे, ठीक है ना। तो लंबे लंबे बाल करते थे, दाढ़ियां बढ़ाते थे, है ना, धोते नहीं थे तो वो कुछ और बन जाता था उनका। तो इस प्रकार वो अपना जीवन जीते हैं। कहीं खुद का भी, खुद के अगर अट्रैक्शन है तो वो तो तपस्या में जल जाते थे, और अगर किसी दूसरे का अट्रैक्शन हो रहा है तो वो उनको देख के वैसे जल जाता था। लेकिन इस भौतिक जगत में, इस सो कॉल्ड मॉडर्न एनवायरमेंट में, प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई साधु शहरों में रह रहा है तो उसका मतलब क्या भाई, क्यों रह रहा है शहरों में भाई, क्या काम है शहरों में? किस लिए रह रहे हो तुम? भोगने के लिए? नहीं। किस लिए रह रहे हो फिर? फिल्में देखने के लिए? नहीं। शहरों में अगर कोई साधु है तो उसका मतलब क्या है? कि उसे केवल प्रचार करना चाहिए, और उन लोगों को जो इस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं सुबह दोपहर शाम भोग विलासिता की जिंदगी में, उनको रोके, उनको समझाए कि आध्यात्मिक जगत कहां है, भगवान की भक्ति का महत्व क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, प्रचार करे। और अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा तो शहर में नहीं रहना चाहिए।
कहां रहना चाहिए उसे? जंगलों में रहना चाहिए। सही बात है ना जी, साधु का मतलब ही जंगल, शहरों में क्या कर रहा भाई। तो इस प्रकार उससे जो है, अब प्रचार का मतलब कई तरह से होता है, प्रचार होता है बोलकर भी, प्रचार होता है गुरु की आज्ञा जैसे उसको बोला गया वो चीज। अब तो क्योंकि कई बार क्या होता है, ये अर्चनम भी प्रचार है ना, मैनेजमेंट भी प्रचार है, सुंदर मैनेजमेंट से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। मंदिर में लोग आते हैं जी, हम इसलिए यहां आते हैं क्योंकि यहां का मैनेजमेंट बहुत सुंदर है, तो ये प्रचार हो रहा है ना। कहते हैं दूसरे मंदिर में जाते हैं सफाई नहीं मिलती, पैरों में प्रसाद लगता रहता है, पंडा लोग पैसे खींचते हैं, ये होता है वो होता है, यहां आते हैं तो बड़ा मन की शांति मिलती है, यहां पर सब कुछ ठीक है, कितना सुंदर मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट भी प्रचार बन जाता है, लेक्चर देना भी प्रचार है, आचरण भी प्रचार बन जाता है अगर गुरु ने कहा है तो, कि भैया तुम शहर में रहकर अच्छा आचरण पेश करो, चार नियमों का पालन करो। तो इस तरह व्यक्ति को जो है शहर में इन्हीं कीमतों पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि चलो कुछ सिद्धांत बताइए, देवताओं को बोला कि उस भक्ति के सिद्धांत बताओ। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य देह मिलने का मतलब क्या है, कि व्यक्ति को चाहिए कि उस देह का सदुपयोग करे और अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर दे, उनके भले के लिए। यहां पर देवता लोग मांग रहे हैं दूसरे का शरीर अपने फायदे के लिए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जरा सिद्धांत बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं, देह का मतलब क्या है कि दूसरों के फायदे के लिए होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार। अगर किसी व्यक्ति का भारत भूमि पर जन्म हुआ है और वो भी मनुष्य का, तो उसे दो काम करने चाहिए। एक तो अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। अपने जन्म को सार्थक करने का मतलब है आत्म साक्षात्कार करना, अर्थात इस देह से मैं अलग हूं, इसको रियलाइज करने का प्रयास करना, और फिर इस रियलाइजेशन को दूसरे लोगों से शेयर करना कि भैया आप लोग देहात्म बुद्धि में जी रहे हो, इस शरीर को मान बैठे हो कि ये आप हो, और इसलिए आपको फिर हर चीज की आवश्यकता है, फिर हर दुख और हर सुख, हर गर्मी और हर सर्दी आपको झेलनी पड़ रही है, तो इससे बाहर निकलो, ये सब तो होता रहेगा। अब सोच कर देखिए कितने सारे जीव कीट पतंगा इधर उधर घूम रहे हैं, सब आपस में बात भी कर रहे हैं, अपना घोंसला भी बना रहे हैं, अपने परिवार को भी पाल रहे हैं, दाना भी चुककर ला रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। हर जीवात्मा को यही लग रहा है क्या, कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। बट मनुष्य देह में व्यक्ति को जानवरों की भांति नहीं सोचना चाहिए, केवल इसी देह के लिए, खाने पीने और सोने के लिए नहीं। मनुष्य देह प्राप्त हुआ व्यक्ति को यह जानने के लिए कि मेरे बार बार जन्म लेने का कारण क्या है, क्यों ना चाहते हुए भी मेरे पर दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो फिर आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करे। हमारा जीवन चलता रहेगा, जितना हमारे भाग्य में लिख दिया गया है उसको कोई रोक नहीं सकता मिलने से, और जितना अगर नहीं लिखा कुछ तो कोई दे भी नहीं सकता। हमारी जो किस्मत में वो हमें मिलेगा। कई बार लोगों को लगता है मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नहीं, ये सारी की सारी चीजें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें मिलती हैं, और आने वाला जीवन भी पूर्व कर्म के आधारों पर चलेगा, और अगर कोई भक्त है तो भगवान के निरीक्षण में चलेगा। अगर पूर्व जन्म के आधार पर चल रहा है तो दुख सुख गर्मी सर्दी लगी रहेगी, और अगर भगवान के सरेंडर कर देते हैं तो फिर करना तो फिर भी वही है ना। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका जीवन अलग है और जो भक्त लोग मंदिर में रहे उनका जीवन अलग है। अर्थात भोजन भक्त लोग भी करते हैं, है ना जी, काम धंधा भक्त लोग भी करते हैं, उनके पास भी एंगेजमेंट है, लेकिन अंतर क्या है कि जो भक्त हैं उन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान पर, और भोजन करना, भोजन की जगह वो प्रसाद करते हैं, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो दोनों जीवन देखने में लग सकते हैं एक जैसे, खाना पीना सब चल रहा है, लेकिन नहीं, भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे करते हैं, कार्य करते हैं। मृत्यु नहीं होती भूखे से, खाकर वैसे को ज्यादा किसी किसी की प्रॉब्लम हो जाए, भूखा कोई नहीं मरता, एक भक्त बाहर से आए, विदेश से भारत भ्रमण किया, तो उन्होंने देखा कि यहां का जीवन तो बहुत सात्विक जीवन है। और उन्होंने एक चीज और बोली कि यहां पर मैंने देखा, पूरा भारत भ्रमण किया, लेकिन क्या देखा कि अन्न की कमी कहीं नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अन्न है, हर व्यक्ति के लिए भोजन है, लेकिन क्या हो रहा है, इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही। इसलिए ये इच्छा व्यक्ति की चेतना को इतना दूषित कर देती है जिससे कि वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए लिबरेटेड सोल्स की बात कही जाती है कि व्यक्ति को जो है मुक्त भक्तों का संग करना चाहिए, या उन लोगों का संग करना चाहिए जो मुक्त हो रहे हैं या उस मार्ग में हैं, जिनकी भौतिक आसक्तियां खत्म हो चुकी हैं या उस प्रोसेस में हैं। उससे क्या फायदा होगा, ऐसे लोग बहुत कम होंगे, लेकिन फायदा क्या होगा, ऐसे भक्तों का संग करने से हमारी जो अटैचमेंट है, हमारा जो इस संसार के प्रति मोह है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। तब जाके हम लोग कुछ और सोच पाएंगे, नहीं तो सुबह दोपहर शाम केवल इस संसार के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग इसी संसार के लिए चल रही है। कुछ क्षण भी हम लोग अपने आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं सोच पाते, इस जगत से बाहर निकलने के लिए नहीं सोच पाते। इसलिए यहां पर नगीची मुनि ने कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ बताइए। तब उन्होंने कहा इस देह का मतलब है कि दूसरों के लिए काम आना। इसलिए अब आपका जो देह है किसके काम आएगा, अगर हम इसे वज्र बना लेंगे तो हम वृत्रासुर को मार सकेंगे, और भगवान की क्योंकि ऐसी आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले लीजिए, मैं इस देह को दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान के भक्त थे इसलिए भगवान का स्मरण किया, या है ना, बोलता था ना भगवान ने यम यम वापिस स्मरण भावा, जो जैसा जैसा स्मरण करता है मरते समय वैसा वैसा देह में दे देता। इसलिए उन्होंने क्या करा, अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर दिया, और फिर इस प्रकार अपने शरीर का, अपने शरीर को छोड़ दिया। तो इस प्रसंग से हमें यह समझना चाहिए कि समस्याएं तो हर जगत में है, चाहे वो ऊपर के लोगों में हो, चाहे नीचे के लोगों में, चाहे घरों में हो या घर के बाहर हो, हर जगह है। लेकिन इन समस्याओं के साथ भगवान ने कहा तान तितिक्ष व भारत, अर्जुन आपको इनको केवल सहन करना है, रिएक्ट नहीं करना ज्यादा, केवल सहन करो और अपने मन को सदैव मुझे अर्पित कर दो। मन मना, मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, इससे काम होगा। केवल 60-70 साल का टाइम है हमारे पास जन्म से, अभी तो 20-30 साल का रह गया, उसमें भी 80% निकाल लीजिए, जितना भी समय बचा उसमें कृष्ण भावना भावित होना है, उसमें अपने हृदय में वो इच्छा डेवलप करनी है कि यस हम भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। मनुष्य देह से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, ये तो केवल एक सुंदर बैग है, उस पैकिंग के अंदर केवल हड्डियां हैं, मांस है, खून है, मल मूत्र है, कफ वात पित्त है, केवल ये है, और पैकिंग बाहर से अच्छी है कि नहीं, सबके शरीरों में ये समान है ना, रॉ मटेरियल तो अंदर यही है ना सारा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ आता, केवल पैकेजिंग से, पैकेजिंग इंडस्ट्री है ना सारी, केवल पैकेजिंग से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी पैकेजिंग, मेरी पैकिंग ज्यादा अच्छी है उसकी पैकिंग से, मुझे ये पैकिंग चाहिए, मुझे ऐसी पैकिंग चाहिए। पार्लर्स में जाकर, जिम में जाकर हम अपनी पैकिंग अच्छी करवाते हैं, बट ये पैकिंग 20 साल बाद 30 साल बाद धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार के भौतिक आकर्षण से दूर रहे और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है? भगवान ने उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी, क्योंकि वृत्रासुर को मारना था और असुर ज्यादा बलवान हो गए थे, तो भगवान ने कहा कि तुम अगर दगीची मुनि के पास जाओगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मुनि थे, और इससे बीच में भी कहीं कथा बताते हैं कि उन्होंने चार कुमार को भी बोला था कि हाँ तुम्हें जो एक कथा थी उसमें तो खैर ज्ञान के विषय में बताया कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया, लेकिन भगवान ने बोला कि दगीची मुनि के पास जाओ आप, इसमें पर्टिकुलर लिखा है, और उनसे आप उनके बोलो कि देह छोड़ दीजिए, हम उसकी अस्थि का अगर बनाएंगे तो वृत्रासुर मर सकता है। तो कारण बता दिया भगवान ने कि कैसे ठीक होगा, सॉल्व कैसे होगा ये मामला। और भगवान एक चीज और भी बताते शास्त्र में कि हर जीवात्मा का मरने का और मारने का कारण मैं ही हूं वास्तव में, ठीक है ना, तो भगवान को ही कारण स्वरूप बनना पड़ता है, इज द ओनली कॉज, हर कारण के वही कारण है। और जो हम लोग देखते हैं कि कहीं कुछ घटना घटित भी हो रही है उसके अंदर भी जो है असली में कारण भगवान ही, तो इस कथा के में भी ऐसे हुआ।
आगे डेडिकेट करो कि भाई मुझको डेडिकेट कर दो सब कुछ, उसका डेडिकेट करने का जप प्रोसीजर, जप
दोबारा बोल दो प्रश्न।
जो अर्जुन जी किशन जी को, किशन जी अर्जुन जी को, अर्जुन जी को कहते हैं कि तुम सब कुछ, जो भी तुम्हें सब कुछ कहते हैं तुम सहन करो, किसी को कुछ मत बोलो और मुझे सब कुछ डेडिकेट कर दो, वो डेडिकेट करने का प्रोसीजर।
ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम लोग को कर्म करने का अधिकार है, हमारी जो ड्यूटीज हैं एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, वो हमें करनी चाहिए। एज अ बिजनेस में भी जो हम लोग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल मैं ही दूंगा, फलों से आसक्त मत होइए। दूसरा, भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनको क्या हो जाए, समर्पित हो जाए। तो समर्पित होने का मतलब क्या है कि जिस समय, इस समय हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं माया को, माया का मतलब जो नहीं है, जो सत्य नहीं है। जैसे हमने बताया शुरू में कि पांच तत्वों से बनी हुई इस संसार में इन्हीं चीजों को हम चाहते हैं, तो इसका मतलब कि हम उनको समर्पित हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम लोगों को माया को समर्पित नहीं होना, हमें कृष्ण को समर्पित होना है। तो समर्पित होने का मतलब क्या है कि अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से, ये सारे कर्म, वाणी और मन को हमें चाहिए कि हम लोग इसे कृष्ण भावना भावित कार्य करें, कृष्ण के बारे में स्मरण करें, जिह्वा से कृष्ण का प्रसाद खाएं, हरि नाम इत्यादि का उच्चारण करें। तो जितना ज्यादा इन क्रियाओं को करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम भगवान को समर्पण, हमारा समर्पण बढ़ रहा है। अभी हम लोग इन सारी इंद्रियों को, इस मन को, इस बुद्धि को हमने माया में अर्थात इस भौतिक जगत में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अभी हम माया को समर्पित है। इसलिए हमारे मुंह से जब भी बात निकलती है तो पैसों की बात निकलती है, पॉलिटिक्स की बात निकलती है, संसार की बात निकलती है। मन में जो प्लान भी चलते हैं वो फ्यूचर को लेकर चलते हैं, इस संसार में रहने के लिए चलते हैं। कर्मों से भी हम, कर्म जो करते हैं वो केवल अपने शरीर और शरीर के संबंधियों के लिए कर्म करना चाहते हैं। तो अभी पूरी तरह माया में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब इन इंद्रियों से भगवान को हम समर्पित हो जाएंगे, मन से, वाणी से, तो धीरे धीरे हमारा समर्पण भगवान की तरफ बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे यहां कम हो जाएगा। तो समर्पण का मतलब है मन, वाणी, कर्म से भगवान के द्वारा बोली गई वस्तुओं का, इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। मन, बुद्धि, अहंकार का जो शरीर है उससे अपने को अलग कैसे समझे? वास्तव में आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होती है, एक सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। सटल बॉडी जो है मन, बुद्धि, अहंकार का है। मन, बुद्धि, अहंकार से अलग नहीं सोचा जा सकता अपने आप को, लेकिन हाँ उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उससे अपने आप को अलग कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इन तीनों को हमको शुद्ध करना है। जैसे फॉल्स ईगो है तो उसको, ट्रू ईगो क्या है? फॉल्स ईगो है कि मैं शरीर हूं, मैं माया का दास हूं। बट रियल ईगो क्या है? कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान का एक अंश। फिर मन के अंदर विचार है। अभी अगर भौतिक संसार के प्रति विचार है तो ये कंटामिनेशन ऑफ माइंड है, लेकिन जब इसी मन के अंदर कृष्ण के प्रति विचार रहेंगे, कृष्ण की लीलाएं रहेंगी, तो ये मन प्यूरिफाई हो गया। और क्या था? ये था ना मन, बुद्धि और अहंकार। और बुद्धि, अभी अगर इस संसार का ज्ञान है हमें कि दो और दो चार होते हैं, हर तरह का ज्ञान है, तो ये ज्ञान कंटामिनेशन है असली ज्ञान के ऊपर। क्योंकि रियल नॉलेज क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, एंड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और हम क्योंकि उनके दास हैं तो हमें उनकी सेवा करनी है, तो ये सही ज्ञान है, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों को छोड़ नहीं सकते, इनको शुद्ध किया जाता है। थॉट से अलग, थॉट से अलग का मतलब है जैसे कि आपको अचानक एक थॉट आया, विचार आया कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो अलग करना ही पड़ेगा आपको, बेकार है यार, मैं तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो फिर मत सोचो उसके बारे में, तो थॉट से अलग होगा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद की।